अध्याय 8 श्रृंगार और भक्ति। भक्ति और श्रृंगार दोनों ही मध्यकालीन साहित्य की अत्यंत प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। भक्त कवियों के श्रृंगारिक वर्णनों को लेकर आलोचकों ने बहुत निर्मम आक्षेप किए हैं। आचार्य शुक्ल जैसे अपेक्षाकृत उदार और सिद्ध आलोचक ने भी सूर के बारे में विचार देते हुए उनके श्रृंगारिक प्रेम के विषय में यही शिकायत की है। उन्होंने लिखा है कि यूनाइटेड कामा समाज किधर जा रहा है इस बात की परवाह ये नहीं कर रखते थे। यहाँ तक कि अपने भगवत प्रेम की पुष्टि के लिए जो श्रृंगारमयी लोकोत्तर छटा और आत्मोत्सर्ग की अभिव्यंजना से उन्होंने जनता को प्रसन्नमत किया, उसका लौकिक स्थूल दृष्टि रखने वाले विषय वासनापूर्ण जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इसकी ओर उन्होंने ध्यान न दिया। इस राधा और कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने अपनी गुढ़ातिगूढ़ चरम भक्ति का विषय बनाया, उसको लेकर आगे के कवियों ने श्रृंगार की उन्माद कारण युक्तियों से हिंदी काव्य को भर दिया। यूनाइटेड कामन शुक्ल जी के इस कथन से दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली तो यह कि वे कृष्ण भक्ति में श्रृंगार की अतिवर्णना को समाज की दृष्टि से कल्याणकारी नहीं मानते। दूसरी यह कि रीतिकाल के कामोदीप्त चित्रणों की अतिशयता का कारण भक्त कवियों के श्रृंगारिक चित्रणों को ही मानते हैं। इस प्रकार के मत दूसरे कतिपय आलोचकों ने भी व्यक्त किए हैं। प्रश्न उठता है कि क्या हिंदी साहित्य में सूर के पहले श्रृंगारपूर्ण चित्रणों का अभाव है? क्या भक्त कवियों ने श्रृंगारिक चित्रण की शैली को आकस्मिक रूप से उद्भूत किया? क्या इस प्रकार के वर्णनों की कोई परिपाटी उनके पहले के साहित्य में नहीं थी? ऐसे प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें मध्यकालीन संस्कृति, समाज और उसमें प्रचलित विश्वासों का पूर्ण विश्लेषण करना होगा। हमें यह देखना होगा कि श्रृंगार की तत्कालीन कल्पना क्या थी, श्रृंगार की मर्यादा क्या थी और उसके किस स्वरूप को समाज में स्वीकार किया गया। जयदेव जैसे कवि ने श्रृंगार और भक्ति को परस्पर समन्वित भावधारा के रूप में ग्रहण किया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि हरि स्मरण में मन सरस हो और यदि विलास कला में कुतूहल हो तो जयदेव की मधुर कोमलकांत पदावली को सुनो। यदि हरि स्मरण सरस मनो यदि विलास कलास कुतूहलम मधुर कोमलकांत पदावली शृणु तदा जयदेव सरस्वतम। गीत गोविंद श्लोक संख्या 3। वह कौन सी सामाजिक परिस्थिति थी जो जयदेव जैसे विख्यात रससिद्ध कवि को यानी संकोच कहने को प्रेरित करती थी कि काम कला और हरि स्मरण उनकी पदावली में एकत्र सुलभ है? यह केवल जयदेव जैसे कवि के मन की ही बात नहीं है। काव्य तो व्यक्ति के मन की अभिव्यक्ति है, इसलिए उसमें निहित सत्य को हम तरैक्तिक धारणा भी कह सकते हैं। उस काल के धार्मिक ग्रंथों में जो भक्ति के नियामक तत्वों का विश्लेषण करते हैं, श्रृंगार और भक्ति की इस समन्वय धर्मिता के बारे में विशद रूप से विचार किया गया है। भक्ति की चरमोपलब्धि के लिए साधक को कई सीढ़ियां पार करने पड़ती है। आचार्य हजर प्रसाद द्विवेदी ने स्त्री पूजा और उसका वैष्णव रूप शीर्षक निबंध में इस विषय पर काफी विस्तार से विचार किया है। उन्होंने लिखा है कि भारतवर्ष में परकिया प्रेम बहुत पुराने जमाने से एक खास संप्रदाय का धर्म सा था। कहा जाता है कि ऋग्वेद से इस परकिया प्रेम का समर्थन होता है कि ऋग्वेद में उसका स्पष्ट वर्णन पाया जाता है। छांदोग्य उपनिषद में कांचन परिहित मंत्रांश का आचार्य शंकर ने इस प्रकार लिखा है, जो वामदेव सामन को जानता है उसे मैथुन की विधि का कोई बंधन नहीं है। उसका मत है कि किसी स्त्री को मत छोड़ो। अवश्य इस मतवाद को वैदिक युग में बहुत अच्छा नहीं समझा जाता हो। कथा वस्तु जातक और मध्यम निकाय से भी सिद्ध होता है कि बुद्ध काल में भी यह प्रथा प्रचलित थी। भगवान बुद्ध ने कई स्थलों पर इसकी निंदा की। बौद्ध धर्म के अंतिम दिनों में ब्रजयान संप्रदाय का बड़ा जोर था। इसके प्रभाव से पंचम कार सेवन का बहुत प्रचार हुआ। महासुख की प्राप्ति के लिए त्रिपुर सुंदरी को पराशक्ति के रूप में निरंतर साथ रखना आवश्यक माना जाने लगा। तंत्रवाद में रति और श्रृंगार की भावनाओं को एक नया स्वरूप और आध्यात्मिकता का रंग मिला। वैष्णव धर्म में नारी पुरुष की पूरक दिव्य शक्ति के रूप में अवतरित हुई। उज्जवल नीलमणि में राधा को कृष्ण की हलादिनी शक्ति स्वरूपा बताया गया, जिसके सहवास के बिना कृष्ण अपूर्ण रहते हैं। चैतन्य देव ने परकिया प्रेम को भक्ति का मुख्य साधन बताया। नारी पुरुष के सामान्य प्रेम की विविध पक्षों का ज्यों का त्यों भक्ति के विविध पक्षों के साथ तादात्म्य स्थापित किया गया। कामशास्त्र का भक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर हम पहले ही विचार कर चुके हैं। यह सैद्धांतिक पक्ष है। विद्यापति सूरदास तथा अन्य ब्रज कवियों को इससे वैज्ञानिक प्रेरणा ही मिली। श्रृंगार के वर्णनों के व्यावहारिक प्रेरणा उन्हें गीत गोविंद तथा प्राचीन भगवतादि संस्कृत ग्रंथों से तो मिली ही, किंतु सीधा प्रभाव उनके ऊपर प्राचीन ब्रजभाषा के काव्य का पड़ा, इसमें संदेह नहीं। प्राचीन ब्रज का मतलब यहाँ प्राकृत अभ्रंश की परंपरा से है। ऐतिहासिक श्रृंगार रचनाओं का आरंभ 6वीं-7वीं शताब्दी के संस्कृत वांग्मय में दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं कि इस प्रकार की रचनाएं पहले के साहित्य में प्राप्त नहीं होती, वैदिक साहित्य में भी इस प्रकार की रचनाओं का संकेत मिलता है, किंतु वहाँ मानव मन में दैवी शक्तियों का आतंक तथा आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का प्रभाव उग्र रूप में वर्तमान है। संस्कृत काव्य देवताओं के स्तुति गान की वैदिक परंपरा के पृष्ठभूमि से विकसित हुआ, इसलिए उसमें पौराणिकता और नैतिक रूढ़िवादिता के सर्वदा प्रधानता नहीं रही। विद्वानों की धारणा है कि लौकिक श्रृंगारपरक काव्यों का आरंभ प्राकृत काल से हुआ, खासतौर से 4वीं-5वीं शताब्दी में विभिन्न जातियों के मिश्रण और उत्तर पश्चिम से आई हुई विदेशी जातियों की संस्कृति के संपर्क के कारण। हूणों और आभीरों के भारत आगमन के बाद मध्यदेशी प्राकृत भाषा इनके संपर्क और प्रभाव से एक नए रूप में विकसित हुई, और इनकी स्वच्छंद शौर्य और रोमांस की प्रवृत्ति ने इस भाषा के साहित्य को भी प्रभावित किया। मध्यकालीन संस्कृति से निजंदधरी कथाओं का सहारा लेकर रोमांस लिखने की परिपाटी, इसका परम विकास बाणभट्ट में दिखाई पड़ता है। शुद्ध रूप से भारतीय शैली नहीं कही जा सकती। अभ्रंश की रचनाएं तो इस मध्यकालीन संस्कृत रोमांस की पद्धति से भी भिन्न हैं, क्योंकि इसमें आमुष्मिकता का आतंक बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ता। हाल की गाथा सत्सई के वर्ण विषय की नवीनता की ओर संकेत करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि इन्वर्टेड कामा प्रेम और करुणा के भाव, प्रेमियों की रसमयी किरणाएं, उनका घात प्रतिघात इस ग्रंथ में अतिशय जीवित रूप में प्रस्फुटित हुआ है। अहिर और अहिरनियों की प्रेम गाथाएं, ग्राम वधुटियों की श्रृंगार चेष्टाएं, चक्की पीसती हुई या पौधों को सींचती हुई सुंदरियों के मर्म स्पर्शी चित्र, विभिन्न ऋतुओं का भावोत्तेजक आदि बातें इतनी जीवित, इतनी सरस और इतनी हृदय स्पर्शी है कि पाठक बरबस इस सरल काव्य की ओर आकृष्ट हो जाता है। यहाँ वह एक अभिनव जगत में प्रवेश करता है जहाँ आध्यात्मिकता का झोला नहीं है, कुश और वेरिका का नाम नहीं सुनाई देता, स्वर्ग और अपवर्ग की परवाह नहीं की जाती, इतिहास और पुराण की दुहाई नहीं दी जाती। ये नोटेड कहावत। द्विवेदी जी ने बड़े सूक्ष्म ढंग से मध्यकालीन श्रृंगार की इस नई धारा और प्राचीन संस्कृत काव्यों की चेतना का अंतर स्पष्ट किया है। हाल की गाथा सप्तशती को विद्वानों ने लोक साहित्य की परंपरा का प्रभाव बताया है। वह लोक साहित्य परंपरा क्या थी, इसका निर्णय देना कठिन है, किंतु उसे लोक साहित्य परंपरा के अग्रिम विकास का विवरण अवश्य दिया जा सकता है, क्योंकि वह भ्रंश में सुरक्षित है। हाल की गाथा सत्सई में ही श्रृंगार के दोनों पक्षों का जो चित्रण प्रस्तुत किया गया है वह इतना मार्मिक है कि परवर्ती काल के कवियों विद्यापति सूरदास आदि ने उन उक्तियों को बिल्कुल अपना बना लिया। इस तरह के दो एक उदाहरणों को देखने से इस काव्य की चेतना और परवर्ती काव्य को प्रभावित करने की शक्ति का पता चलता है। परदेशी प्रिय लौट कर आता नहीं, नायिका उसके प्रेम की अतिशयता के कारण प्रिय आज ही गया है ऐसा कहकर जो रेखा खींच देती है उनसे दीवार भर गई, किंतु वह आया नहीं। अज्जम गोवंती गंडिये पढ़म बिब्ब दिहड्ढे कुड्ढो रेहाहे चितलियो। विद्यापति की नायिका तो दिवस की रेखा खींचते खींचते अपने नाखूनों को ही खो चुकी है, किंतु श्याम मथुरा से लौटने का नाम नहीं लेते। कत दिन माधव रहब मथुरापुर कवे घुचब विहि बाम, दिवस लिखि लिखि नखरे कोयाउल, बिछुरल गोकुल नाम। विद्यापति का ऐसी भाव का एक दूसरा पद देखिए। कालिक अवधि करिय पिय गेल, लिखैते काल भीति भरी गेल, भले प्रभात तहत सबहीं, कह कह सजनी काल कबहीं। हेमचंद संकलित दोहों में भी एक में यही भाव व्यक्त किया गया है। जो मई वीणा दिहडा अवसितण, ताण गंती अंगुली जज्जारियाय नटेण। गाथा सप्तशती की एक दूसरी गाथा में नायिका अपने प्रिय के आगमन पर कहती है कि तुम्हारे आने पर सभी प्रकार के मंगल आयोजन करके तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नयनोत्पल से मैंने पद प्रकीर्ण किया है और कुंचों का कलश बनाकर हृदय के द्वार पर स्थापित कर दिया है। रत्या पैणया अड़ुप्पला तुम सा पणिच्छये एंतम, दारणि हिय हिंदेहि वि मंगल कलशे हिव फणेहि। सूर्य की गोपी कृष्ण के आने पर अपने हृदय की कमल कुटी में आसन ठीक करती है और मंगल कलश की तरह उसके स्तन चोली के बंधन तोड़कर स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। करत मोहि कछुए न बनी, हरि आय चित बत ही रही, सखी जैसे चित्रधनी, अति आनंद हर्ष आसन उस कमल कुटी अपनी, हृदय उमग कुछ कलश प्रकट भय टूटी तरिक तनी। विद्यावती की राधा कहती हैं कि प्रियतम तुम्हारे आने पर मैं अपने देह के प्रत्येक अंग से मांगलिक आयोजन का साज करूंगी, दोनों खूंचों को कनक कुंभ की तरह स्थापित करूंगी और आंखों में काजल लगाकर उन्हें अपशकुन निवारणार्थ रखे हुए काजल चित्रण दर्पण की तरह रखूंगी। पिया जब आऊब मजुद गे हैं, मंगल जतन करब निचते हैं, कन कुंभ करी कुछ युग राखी, दर्पण धरब काजर देह आखी। प्रिय से मिलने की उत्सुक नायिका अविसार के लिए जाने से पहले इतनी प्रेम विवल हो गई है कि वह निभिलिता सी अपने घर में ही चहल कदमी कर रही। अज भय गंतव्यम धन अंधारे वी तस्स सुहस्य, अज्जा निमिक्षी पय परिवांडी घरे कुरई। सूर्य की राधा की भी तो अभिसार की उत्सुकता के कारण यही हालत हो जाती है। आप उठी आंगन गई फिर घर की आय, कबधों मिली हों श्याम को गल रहे न जाय, फिर अजिरही भवन ही तल वेल लागे, सूर श्याम के रस भरी राधा अनुरागी। संक्रांतिकालीन अभ्रंश में लिखे हुए दोहों में मुंजराज और मृणावल्ती के प्रेम पर लिखे हुए दोहे अपनी रसमयता और सांकेतिकता के लिए प्रसिद्ध हैं। आरंभिक ब्रजभाषा में लिखे दोहे श्रृंगार काव्य के मुक्ताहाल हैं। इसमें सहज प्रेम और नैसर्गिक माधुर्य की एक पराकाष्ठा दिखाई पड़ती है। मुंज भणये मुड़ावलई जुवण गयु न भोरी, जो शक्कर सय संड थिय सो विस मीठ चूरी। शर्करा का सौवा खंड भी क्या मिठास पे कम होता है। मुंज अपनी प्रौढ़ा नायिका को हर प्रकार से आश्वस्त करना चाहता है। हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में संकलित दोहों से प्रेम और श्रृंगार की अत्यंत स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। विरह की विमूढ़ वेदना को व्यक्त करने वाले एक एक दोहे में परिवर्ती ब्रजभाषा के विरह वर्णनों का पूरा इतिहास भरा पड़ा है। प्रिय विश्लेष दुख से पीड़ित नायिका पी पी पुकारने वाले चातक से कहती है, अरे निरीह चातक, क्यों व्यर्थ पीव पीव पुकार रहा है, इतना रोने से क्या होगा, तेरी जल से और मेरी वल्लभ से कभी आशा पूरी न होगी। वह पीहा पीव पीव भणवे कित्यु रुवई हयास, तुह जल महपुड़ वल्लह विहु वीनपुरी आस। वह पीहे के बार बार पुकारने पर वेदना विजड़ित चित्त से वह निराशा को स्वाभाविक मानते हुए आक्रोश व्यक्त करती है। चिल्लाने से कुछ न होगा, विमल जल से सागर भरा है किंतु अभागे को एक बूंद भी नहीं मिलती। वह पीहा कई बोलियड़े निग्ध बार ही बार, सागर भरई विमल जल लहई न एक धार। सूर की गोपियों के विरह वर्णन को जिन्होंने पढ़ा है वह जानते हैं कि पपीहा के प्रति प्रेम आक्रोश सहानुभूति के कितने शब्द गोपियों ने नाना प्रकार के करुणा भाव भावुक छास के साथ सुनाए हैं। सखिरी चातक मुहि जियावत, जैसे ही रैन रटत हो पियो पियो, तैसे ही वह पुनि गावत। अजहो पियो पिय रजनी सुरति करी, झूठों के मुख मांगत वारी। सब जग सुखी दुखी, तूजल बिनु तौ न उर की विथा विचारत। मंगल या संयोग श्रृंगार में जड़ता या चेतन के स्तुति का वर्णन किया जाता है। अभ्रंश दोहे में एक नायिका कहती है कि अंग से अंग न मिले, अधरों से अधर न मिले, मैंने तो प्रिय के मुख कमल को देखते ही रात बिता दी। अंग ही अंग न मिलो हाली, अहरे अहर न पत्तु, पियो जियंती है शुह कमल एम्बई सुरऊ समत। प्रिय के सौंदर्य का ऐसा ही अप्रतिम चित्रण सूरदास की रचनाओं में भरा पड़ा है। कमल नयन मुख बिन अवलीक रहत न एक घरी, तब तय अंग छवि निरखत सो चित्त ते न टरी। इन दोहों में कुछ तो सच्चे श्रृंगार और प्रेम के दोहे हैं, कुछ श्रृंगारिक उक्तियों और उत्तेजन भावों के भी, जिनका अतिवादी विकास बाद में बिहारी आदि रीतिकालीन कवियों के काव्य में दिखाई पड़ता है। इनमें श्रृंगार का गंभीर रूप नहीं दिखाई पड़ता, उहात्मक अथवा अत्यंत स्वस्तिक कोटि के कामों को श्रृंगारिक चेष्टाओं की विवृत्ति दिखाई पड़ती है। रीतिकालीन कविता को सस्ते किस्म के श्रृंगार की प्रेरणा भी यहीं से मिली। ऐसे भक्तिकाल के श्रृंगार का विकास नहीं कहना चाहिए, वैसे सूर तथा अन्य भक्त कवियों ने श्रृंगार का कहीं कहीं बड़ा उद्दाम और विक्षोभक चित्रण भी किया है जो मर्यादित नहीं है। ऐसे चित्रणों ने ही रीतिकालीन कविता को श्रृंगार के अश्लील कोटि तक पहुंचाने में मदद की। इसके लिए कुछ अंशों में सूर विद्यापति आदि के रति और संभोग के श्रृंगारिक वर्णन भी उत्तरदायी हो सकते हैं। इस प्रकार अष्टछाव के भक्त कवि अथवा रीतिकालीन कवियों की घोर श्रृंगारिक चेष्टाओं वाले काव्य की भी प्रेरणा प्राचीन ब्रज के इन दोहों में वर्तमान थी। विट्टी ए मई भणिय तुहमा कुरु वंको दिठ, पुत्ति शक्कण भल्ल जीव मारि हे अई पैठ। हे पुत्री, मैंने तुमसे कहा था कि दृष्टि बाकी मत कर, यह अनिदार भाले की तरह हृदय में बैठकर चोट करती है।